ये कुरान शरीफ ये है मुतरजम ब्रहसिय यानी सानुवाद स्कीपन, नीचे है नंद कुमार अवस्थी रूपांतरकार है इसका, और कहां से ये छपी है इसको देखिएगा, शेरवानी संस्करण। अब देखिएगा ये है जालिकम किताबू ला रैब फीही सलाल फीही, इसका अर्थ है कि यह वह इस्लामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। नीचे देखिएगा कुरान शरीफ, कुरान शरीफ मुतरजम ब्रहसिय सानुवाद सटीपन, नीचे देखना शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, नीचे देखना शेरवानी संस्करण, और ये देखना मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से ये छपी है प्रकाशित हुई है। इसकी सूरत फुरकानी ये प्रश्न नंबर 605 पर नीचे आइएगा, यह है सूरतुल फुरकानी 25, नीचे आइए ये 52 नंबर आयत आपको दिखाते हैं, ये देखना आयत नंबर 52, इसमें क्या लिखा है यहां देखना, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह अपने पैगंबर मोहम्मद जी को हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि तो ए पैगंबर वो काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इसमें क्या लिखा है संस्कृत देखो इसकी, यहां इधर 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 आइए, हम अब संस्कृत पढ़ते हैं, ये नीचे 52 बिल्कुल नीचे ये 52 है, इसमें ये कबीरन शब्द लिखा, कबीरन कबीर कबीरन कबीर कहो कबीरन कहो, यहां देखना ये है फला तुतियल काफिरन वे जाहिदुम जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीरन इसमें क्या लिखा है कि हजरत मोहम्मद को गीता कुरान शरीफ का ज्ञान बोलने वाला अल्लाह कह रहा है ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया कबीरन का। अब यहां इसका अर्थ ये बनता है कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना भगवान मानते थे, वो कह रहा है कि मैं तुझे जो कुरान में ज्ञान दे रहा हूं इस पर विश्वास करना, और ये काफिर लोग इस कुरान के ज्ञान को नहीं मानेंगे, वो कबीर को परमात्मा नहीं मानते, तो उनके साथ संघर्ष करना, लड़ना नहीं, तो उनकी बात मत मानना, उनकी बातों में मत आना। तो ये कौन है वो कबीर, अब 53 में श्लोक आयत में कहा है कि वो परमात्मा है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, जिसने सारी सृष्टि रची, और जिसने सब या जितना भी 7 दिन में सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक प्रजा बैठा, ये देखिएगा। अब यहां इसमें अब यहां देखिएगा 58 नंबर आयत में यहां लिखा है 57 इसका, यहां देखना ये लिखा है वह तवकल अलल हिजाहली या युतुम वैसबहू, ये सारे है यहां लिख रहे इवादी कबीरा। अब हम इतना तो हमें भी नहीं आती है अरबी, लेकिन हिंदी कर रखी है इन्होंने, उससे बहुत कुछ बात बन जाती। यहां इवादही, इबादत माने पूजा होती है, इबादही माने पूजा के योग्य। वो खबीरा, खबीरा कहो चे कबीरा कहो, उन्होंने वहां कबीरन का अर्थ भी बड़ा किया है। 58 नंबर आयत में खबीरा का अर्थ भी इन्होंने बड़ा किया। 59 में देखना, फिर ये देखना, ये है अरहमानु फसल भी ही खबीरन, खबीरन का अर्थ भी बड़ा किया। खबीरा कहो, कबीरा कहो, कबीर कहो। तो यहां देखिएगा, अब हम इन ये 52 नंबर आयत की हिंदी आपने पढ़ी थी, अब 53 की पढ़ो। और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने का बुझाने वाला, और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बनाकर बना दी। और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब, नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुर वाला यानी किसी की का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज का करने पर शक्तिमान है। अब देखो, गीता ज्ञान, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि वो परमात्मा तेरा जो भगवान है वो कोई, वो सर्वशक्तिमान, वो कबीर नामक भगवान है। आगे लिखा कि और अल्लाह के सिवा ये काफिर जो हैं, ये काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब 55 में क्या कहा, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं, अर्थात वो आन उपासना करते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और वे ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजब से डराने के लिए भेजा है। आगे देखो, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता हूं, हां जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तार करे कर ले। अब 57 में, अब 58 में क्या लिया, कहा कि ए पैगंबर, वो कबीर खबीरा जो शब्द लिखा है उसका अर्थ देखना, ए पैगंबर जिस जिंदा, ओए होए, जिस जिंदा, इसने जिंदा कर चैतन्य कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा करो, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। 58 में इन्होंने कबीर शब्द का अर्थ काफी कर दिया, यहां लिखना था वह कबीर खबरदार है यानी जानता है। आगे देखिए, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है उसको 6 दिन में पैदा किया और फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया, वो अल्लाह कबीर बड़ा रहमान दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इलम वाले से पूछ देखो। अब यही तो आपने पवित्र गीता जी में पढ़ा कि उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से जाकर के पूछो, जैसे वो बताओ वैसे करो। और यही प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ ने बता दिया कि कुरान शरीफ के ज्ञान दाता कौन है, ये ज्योति निरंजन ब्रह्म, जो समक्ष नहीं आता, प्रत्यक्ष नहीं होता, गुप्त रूप से प्रेरणा करते आकाशवाणी करके या कोई संदेश वाक देकर अपने इस ज्ञान को प्रचार करवाता है, और वो साथ में प्रभु से डरता है, डरता हुआ उस परमात्मा का भी ज्ञान उसके विषय में जानकारी भी देता रहता है, और साथ में अपने अज्ञान से भी वो का भी वो प्रचार करवाता रहता है। तो जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना खुदा मानते हैं और ये मुसलमान भाई मानते हैं कि कुरान शरीफ का ज्ञान अल्लाह ने दिया है, तो वो कभी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, वो परमात्मा जो है उस वो कबीर है, और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। अब 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा, वो कौन है, कैसा है, ये पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन वो तख्त पर जा बैठा, और वो कैसा है उसने स्पष्ट लिखा पवित्र बाइबल में कि वो मनुष्य जैसा है। अल्लाह ने परमात्मा मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, देखिएगा पवित्र बाइबल में यह स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, अपने काम को समाप्त किया और 7वां दिन विश्राम किया। ये लिखा है परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और अपने उसने अपने किए हुए सारे काम को 7वें दिन विश्राम किया। अब परमेश्वर ने 7वें दिन जो को आशीष दी कि वह पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। यानी 7वें दिन, तो ये जो पवित्र बाइबल वाला ज्ञान है कुरान शरीफ के अंदर, ये कम से कम 50% लिखा हुआ है। तो कहने का भाव ये हुआ कि इन दोनों पवित्र ग्रंथों ने, पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ ने मिलजुल कर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और वो मनुष्य जैसा है। साथ में ये भी सिद्ध कर दिया कि उस परमात्मा के बारे में कोई तत्वदर्शी संत ही ज्ञान देगा, उसी से पूछ देखो, यही पवित्र गीता जी ने लिखा है, यही पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है कि ये काफिर लोग एक भगवान ने उस पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य ऐसे देवताओं को पूजते हैं, अन्य भगवानों की देवताओं की पूजा करते हैं जो उसको कोई लाभ हानि दे ही नहीं सकते। यही पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 और श्लोक 14-15 और 20-21-22-23 में स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति उस परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उन मूर्खों की वो पूजा अज्ञान युक्त है और उनको कोई लाभ नहीं होता। अब आपको ये तो स्पष्ट हो गया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, उसका नाम क्या है, वो कहां रहता है, उसकी प्राप्ति की विधि क्या है, ये जानना अब शेष रहता है। विशेष जानकारी के लिए हम आपको काफी प्रमाण देंगे, बहुत सारे प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसका नाम कबीर है, वो सह शरीर है, और उन आंखों देखे हुए महापुरुषों के अनुभव की जानकारी भी देंगे, उनकी कथाएं भी आपको सुनाएंगे कि कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, और उस परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। अब उस परमात्मा की महिमा, उसकी जानकारी पूर्ण परमात्मा की प्रारंभ की जाएगी। मूर्ख मन वा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मन वा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी। अब यहां पर परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा का आसन खिसा जब सुनी काल की गाज। ये ज्योति निरंजन जो भगवान है, ब्रह्म है, ये काल है, जो गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं और इन सब न खाऊंगा। वो काल जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और उसको श्राप लगा हुआ है, उसको एक बीमारी लगी है कि 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाएगा। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ गया तो उसकी रेंज से बाहर हो जाएंगे, वो उसकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं, उनको वो कुछ परेशानी पैदा नहीं कर सकता। अब यहां हमें 24 घंटे हर समय चिंता बनी रहती है, चाहे कोई कितना बड़ा अधिकारी है, चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी क्यों ना, पूरी पृथ्वी का राजा भी क्यों नहीं है, उसको भी यहां कोई न कोई चिंता सताती रहती है। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को और कोई राज्य में कोई दिक्कत होने की चिंता है। तो जब हम भगवान के चरणों में आ जाएंगे तो हमें कोई कष्ट नहीं आने देगा, और छोटा मोटा कोई कष्ट आएगा तो हमारे बहुत भयंकर जो पहाड़ से भी बड़े दुख को टालने के लिए प्रभु थोड़ा सा कष्ट आने देगा। जैसे संत सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूढ़ी हो भाई कांटे में टल जा। जय भाग्य में हमारी किस्मत में सूढ़ी टूटना हो, फांसी टूटना हो, मृत्यु की सजा हो तो कांटा लाग के टल जा। पूर्ण संत की शरण में आने से ये लाभ हो जाता है। एक समय की बात है, परमात्मा प्रभु का एक अपने नाना रूप बना करके परमात्मा आते रहते हैं कबीर जी, और संतों को संत रूप में अपनी भूमिका करते रहते हैं। एक समय की बात है कि गांव के बाहर एक संत रहता था और उसने वहां पर एक आश्रम बना रखा था छोटा सा। तो उस आश्रम में वो कुछ महीने रुकता था, फिर दूसरे आश्रम में चला जाता था, फिर तीसरे आश्रम में चला जाता था, चौथे में चला जाता था, और एक आश्रम में वो महीना 20 दिन 2 महीने डटा करता था, रुकता था। साथ में उसके 2-4 शिष्य होते थे। तो गांव वालों ने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उस संत की सेवा के दिन बांट रखे थे। एक दिन वो परिवार उनको पूरे दिन का भोजन कराएगा, एक दिन वो कराएगा, उन्होंने पहले से निर्धारित कर रखे थे। तो इसी प्रोसीजर के अंतर्गत, इसी रूटीन में ये सब काम चल रहा था। एक दिन एक बहन जो संत की शिष्या थी उसकी उसकी बारी आ गई खाना खिलाने की, और परमात्मा की कृपा होनी हुई उसका दूध फट गया। दूध फट गया तो उस बहन ने सोचा आज तो बात बिगड़ेगी, जय गुरु जी के लिए खीर नहीं बनाई थे, एक मुश्किल से थे एक महीने में नंबर आया है, आज खीर ना बनी तो बात बिगड़ जाएगी। वो एक पड़ोसन के घर गई, जाके बैठगी, पहले कोई वस्तु मांगने से पहले शिष्टाचार के नाते कुशल मंगल पूछी जाती है। उस सत्संग में जाने वाली बहन ने, जो नए सत्संग में जाने वाली बहन थी उसके घर में जाके कहा कि बहन कुशल तो है। उस बहन ने कहा कि बहन के कुशल बताऊं, आपको सब पता है, छोटा सा बेटा था मेरा, छोटा सा बालक था लड़का, उसी समय पति की मृत्यु हो गई थी। फिर मैंने सोचा था इस बच्चे ने पाल पोष दूंगी, बड़ा होगा इसके आस पर मैं अपना दिन तोड़ रही थी कि बड़ा होकर के ये लायक निकलेगा और अपने काम ने संभाल लेगा। यो ऐसा निकम्मा हो गया, शराब पीने लग गया, नशे करता है, मेरी एक भी बात नहीं मानता, सारी सारी रात पता नहीं कहां घूमता रहता है, कभी देर से आता है कभी सवेर से आता है, काम को कहती हूं तो मानता नहीं है। मैंने तो रो रो के अपनी आंखें खराब कर ली है, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां मरूं। तब उस बहन ने कहा, बहन आप सत्संग में जाने वाली बहन ने कहा कि आप मेरे साथ सत्संग में चला करो, वहां जाने से आपका दुख हल्का हो जाएगा, बहन भाइयों में बैठोगी, बतलाओगी, भगवान की चर्चा सुनेगी, तेरा कष्ट कुछ नरम बनेगा। तो वो बहन कहने लगी कि बहन मैं नहीं जा सकती सत्संग में, क्योंकि मेरे सिर पर धनी नहीं है, मेरा पति नहीं है, तुम्हारे तो पति हैं और दुनिया की जुबान बंद है, यदि मैं सत्संग में जाने लगी तो ना जाने लोग के बात बनाएंगे कि इस पर धनी नहीं है सिर पे और ये ऐसे ऐसे बदनाम किया करेंगे। तब वो सत्संग में जाने वाली गुरु की शिष्य ने समझाया, बेबे ये बहन हमने समाज नहीं देखना, हमने अपना आत्म कल्याण देखना है। देखो मीरा सत्संग में सुने हुए विचार जो थे गुरुदेव से, तो वो गुरु की शिष्य बताने लगी कि मीरा बाई ने समाज नहीं देखा, भगवान देखा। यदि मीराबाई समाज से डरकर और सत्संग में ना जाती तो मीराबाई को कोई याद नहीं करता, उसका मोक्ष नहीं होता, वो भी कितना गदी बनी फिर रही होती। मीराबाई को यह समझ में आ गया था कि ये समाज मेरे को कोई लाभ नहीं देगा, जब मैं शरीर छोड़कर जाऊंगी उस समय मेरा किया हुआ पुण्य और ये भजन मेरे साथ रहेगा, जिस कारण से उसने मीराबाई ने समाज को नहीं देखा, भगवान को देखा। ए बहन संतों के शरण में जाने से ये दुख भी दूर हो जाया करते हैं, हो सके तेरा लड़का भी सुधर जा। अब उस बहन की ये बात सुनकर कहने लगी, बहन गुरु शिष्य जो गुरु की शिष्य थी उसकी बात सुनकर वो अनुपदेशी जो उपदेश नहीं ले रही थी वो कहने लगी, बहन मेरे बस की बात नहीं सत्संग में जाने की। हाँ तो आप कैसे आना हो गया तेरा। तो जो सत्संग में जाने वाली यानी गुरु की शिष्या थी वो कहने लगी, बहन आज मैंने गुरुदेव का भोजन देना था, मेरा सेवा का नंबर है और हमारा दूध फट गया, आपके घर ताजी ब्याई गाय है, मुझे दूध दे दे, और चाहे उधारा दे चाहे मोल दे दे। उस बहन ने आओ देखा ना ताओ देखा, दूध काट के उसी टाइम निकाल करके भैंस के थनों से खुट्टी का टांग रखा था, बाल्टी ज्यों कीटों भरी हुई, उठा के वह बाल्टी सारी की सारी उसके पात्र में डाल दी और कहने लगी, बहन जी आप ये दूध ले जाओ। अब वो गुरु की शिष्या ने कहा, बहन कुछ तो रख ले घर के लिए, अके नहीं आज तू सारा ले जा, इसने मेरे भी भाग जाग जाएंगे, महात्मा जन भगत जन भोजन खाओगे हैं, और आप ले जाओ। अब पुण्यात्माओं अच्छे काम में सहयोग दे तो पुण्य बन जाते हैं, और अच्छे काम में जो वादा करता उसको पाप लग जाते हैं। अब वहां से उस बहन के पुण्य शुरू हो गए, परमात्मा में उसका सिर हो गया, उसमें उसका साझा बन गया। उसी दिन से वो आहार संतों ने खाया, भक्तों ने खीर खाई। कुछ दिनों के बाद उस बहन ने जो सत्संग में जाती थी उसने विचार किया, परमात्मा ने प्रेरणा की कि इतनी भगवान बहन है, इतनी दाता है वो, कि उसने सारा दूध उठाकर दे दिया, हो सकता है वो भगवान के चरणों में चल पड़े, उसका उद्धार हो जाए, बड़ी भाग्यवान है, बहुत अच्छी नीयत की है। उस सत्संग में जाने वाली बहन ने सोचा कि मेरे से भी कोई मांगण आ जाती सत्संग मारी गुरु की शिष्य तो भी मैं सारा दूध नहीं देती, उसको थोड़ा सा देती, अपना रख लेती। और उसने तो ना वो सत्संग सुन रखा, ना वो कभी ऐसे विचार उसके अंदर आए, और वो इतनी दयालु है कि उसने सारा दूध उठा के दे दिया। अब इस भाव से वो जाकर उसके पास बैठ गई, फिर सत्संग की चर्चा करने लगी, रोजाना जिक्र कर दे, घंटा आध घंटा बैठे। फिर उस बहन को भी आनंद साने लग गया जो विधवा थी, और वो लड़का उसका शराब शुरू पीता था। कहने का भाव यह है कि सत्संग के विचार सुनने से एक दिन उस बहन को जो अनुपदेशी थी एकदम प्रेरणा हुई, कहने लगी बहन मैं भी आपके साथ सत्संग में चलूंगी, नाम लूंगी। अब सत्संग गई, वहां विचार सुने तो उस बहन ने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे उपदेश दे दो महाराज जी। लड़की और जब उपदेश लिया, उपदेश लेकर के आ गई, फिर सत्संग में जाने लगी। जाते ही गुरुदेव के पास यही अर्ज किया करती थी, हे गुरुदेव, हे महाराज जी, मेरा बेटा बहुत बिगड़ गया, शराब पीता है, मेरे कहे के नहीं मानता, अपने चरणों में ले लो प्रभु। इस दुखिया का सबसे बड़ा यही दुख है, बचपन में पति मर गया, जो छोटा सा बालक था जो पति मर गया, मैंने शादी भी इसलिए नहीं कराई कि इस बालक ने दुख हो जाएगा, और आज इस बच्चे ने मुझे इतना दुखी कर दिया, मुझे कहीं ठिकाना नहीं है, कहती हूं तो मानता नहीं है। गुरु संत जी कहने लगे, बेटी तू अपनी भक्ति करती रहे, भगवान जरूर सुनेगा तेरी एक दिन। अब क्या होता है कि सत्संग माने से पता चलता है कि भाई कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। उस बहन का ने को प्रेरणा हुई कि वह पूरे दिन का, उसने फिर कहा जो बहन उसको नाम दिला के लाई थी उसी से कहा, बहन एक दिन की सेवा मुझे भी दिला दो, मैं भी कुछ सेवा करना चाहती हूं गुरुदेव की। अब उसने दो चारों से प्रार्थना की, सब नाटकीय, कहने लगे ना भाई ना बहन, मुश्किल से दिन मिला हमारे को तो आज सेवा का, हम तो अपनी बारी नहीं देंगे। उस बहन ने जो उसको नाम दिला के लाई थी उसी ने अपने टन में से शाम के समय का भोजन दे दिया, बहन सुबह का तो मैं खिलाऊंगी, अगली जो बारी आई तो शाम का तू खिला दिए। तो बड़ी खुशी हुई उस बहन ने जो नई सत्संग में गई थी, पहली बार उसने सेवा का मौका मिला, खुशी खुशी में खीर बनाई, हलवा बनाया, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, और इस रुचि में आज गुरु जी को खिला के आऊंगी, भक्तों को खाना खिलाऊंगी। अब क्या हुआ, खेल कुदरत का हुआ, बहन खाना बना रही थी, उसको बुखार हो गया, बहुत जबरदस्त बुखार हो गया, और इतना हो गया कि वो 10 कदम नहीं चल सके। अब उस बहन ने अपने आप को कोसा, देखे भगवान आज तो मुझे मुश्किल से अवसर मिला था वो गुरुदेव की सेवा करने का, और आज ये बुखार बन गया, मैं 10 कदम नहीं चल सकती। और वो बेटा ऐसा नालायक से आवे तावर ना भी आवर, आ भी गया तो कया ना माने, वो कति नहीं जा, और आज मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी तो मुझे कभी भी टर्न नहीं मिलेगी, मुझे कभी सेवा का मौका नहीं मिलेगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इतने में वो लड़का आ गया, तो उसको उसकी मां ने कहा, बेटा मेरा एक छोटा सा काम कर दे आज तू। वो बोला के क्या क्या काम है मां? बेटा मैंने ऐसे ऐसे नाम ले लिया गुरुजी का, और ऐसे ऐसे उस तेरी चाची ताई से मैंने शाम का सेवा मांग रखी है, गुरुजी का भोजन देख आना, बेटा मेरा बुखार हो गया देख। अब लड़के ने मां का हाथ पकड़ के देखा, बोला मां बुखार तो बहुत तेज है तेरे, तो उसकी माँ बोली, बेटा ये रोटी मैंने बांध डाल रखी है और तू आश्रम दिया। वो थोड़ी सी दूर पर आश्रम था, एक किलोमीटर दूरी पे। तो वो उस लड़के ने के सकीम बना रखी, उस लड़के ने हाँ, तो उस वो लड़का ना हट गया, अकना मैं ना जाऊं, मैं ना देखा हूं तेरे गुरुजी का भोजन। उन्होंने के सकीम बना रखी, वो चोरी करने लगे और उन्होंने उस अपने साथियों से मिलकर उस बहन के लड़के ने और अन्य साथियों ने सलाह बना रखी कि रात्रि के समय राजा के महल में चोरी करांगे। रानियां के 9-9 लाख के हार होते हैं, इतना बढ़िया सोना होता है, और उसको लावांगे और मालो माल हो जावांगे, ऐसे मकान बनावांगे, खूब दारू पिया करेंगे। बच्चे थे जैसे अपने मन में मियां मिट्ठू बने। वो उन्होंने स्कीम बनाई कि रात्रि में 12 बजे उस मंदिर में इकट्ठे होंगे, वहां आ जाना, फिर वहां से चोरी करने चलेंगे। अब उस लड़के ने तो वो 12 बजे दिखे थे, कहीं मैं सत्संग में चला जाऊं और मैं लेट हो जाऊं और मेरे साथी चले जाऊं चोरी कर, तू पीछे रह जा, तुझे आज हार ना मिले ना सोने का, तू कंगाल रह जाएगा। उसने उस अपने नुकसान को देखते हुए माँ को कति मना कर दिया कि मैं नहीं देखा हूं तेरे गुरु जी का भोजन। अब वो माँ असहाय होगी, वो बोली रे निकम्मे, तू आजाद युग मेरे आजाद युग काम कर दे बेटा, जिंदगी में तने काम नहीं कहूंगी। और वो मेरी साथन थी बहन, वो भी जा चुकी है, अगर मैं उसके हाथ से भी पहुंचा देती, सब जा चुके हैं सत्संग में जाने वाले। तो उसने वह नो कह के रोन लग गई बैठ के एक तरफ, और तो कोई चारा के चले। वो 15-16 साल का हो रहा था, छोटा बालक होता, दमका दे, पीट दे, खुरका के भेज दे। एक तरफ जाके कुंड में बैठ के खूब रोए, ए भगवान इसी पापन को क्यों जन्म दो थे, मुश्किल से सुथरी अशुभ कर्म करने का अवसर मिला था, आज ये विभाग में कोई ना मुझ पापन कहे। तो उस लड़के ने दया आ गई मन में कि देख माँ बहुत दुखी हो रही है, अरीबा तो 8 बजे है, तू तो दिया घंटा लग जाएगा, गणित गणा 9-10 बजे तक फारिग हो जाएगा। तो उसने कहा ला माँ रोवा मत, ला मुझे दे, कहा रखा हो दे के आता हूं। तो उसने बेचारी ने वो खाना पकड़ा दिया, तो वो लड़का लेकर खाना चल पड़ा। अब वो प्रतिदिन प्रार्थना किया करती थी, गुरुदेव आपके मेरे बेटे ने शरण में लेना, जो सत्संग में बहन भाई जाया करते थे, उन्हें देखा कि उस बहन का लड़का आज रोटी ले आ रहा है, लेकर आ रहा है। तो सब ने खुशी हुई कि गुरुदेव ने बड़ी सुनी, उसका बेटा भी शरण में आ गया। तो उन्होंने कहा गुरुजी आज वो बहन जो आपसे बार बार प्रार्थना किया करती थी, मेरा बेटा भी गिर गया, उसको शराब पीता है, आज वो आपका खाना लेकर आया है, आपने बड़ी सुनी, उस बहन की बहुत दुखी थी। उस लड़के ने कहा कि गुरुजी कहाँ है, महाराज जी कहाँ है, उन्हें सत्संग गए हुए भक्तों ने कहा भाई महाराज जी स्नान करने गए हैं, अभी आ जाते हैं। तो आध घंटा और लग गया, गुरु जी स्नान करके आए इतने, और उसको वो उंगलियां पर मिनट गिने कि कहीं तू लेट हो जा, चोरी ना कर पावे, तुझे वो धन ना मिला। महाराज जी आए, आसन ला रखा था खाना खाने के लिए, वहां वो खाना उन भक्तों ने खोल के गुरुदेव के सामने रख दिया। तो गुरुदेव ने कहा बेटा आ जा, तो मेरे निकट बैठ जा। बताने लगा बेटा बीड़ी शराब तम्बाकू नहीं पीनी चाहिए, मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिलता, इसमें परमात्मा का नाम लेना चाहिए। बेटा महात्मा ने सोची तो न्यो थी कि वह माई बहुत दुखी रहे बेचारी, री बच्चे ने समझा जो 2 मिनट इसकी बात समझ में आ जाओ, यू नाम में ले ले। लेकिन वो लड़का ने बोला बाबा जी रोटी खा जल्दी, मैंने देर हो है, शिक्षा की जरूरत नहीं मुझे तेरी की, मेरी माँ बीमार होगी इसलिए मैं खाना लेकर आ गया, न मैं ना हूं वो तुम्हारे पास। वो महात्मा जी ने सोचा बात लड़की ठीक रो है निकम्मा बिल्कुल ही, तो बोलने का भी ना बेरा, इसने खाना खा लिया और उसने खाना खाते ही ठाक वो बर्तन और भाग लिया। अब वो दौड़ा आ रहा था, रस्ते में उसके पैर में कांटा लग गया, सूल चल गई अच्छी पूरी लंबी, और वह लग के अंदर टूट गई, शरीर के उस पैर के अंदर ही टूट गई। अब वो लंग करता हुआ घर में प्रवेश हुआ। जो बर्तन लेकर गया था वो वहां आंगन में जाकर पटक्का मारे और कहने लगा, गया था तेरे सत्संग में, मेरे पैर में कांटा लग गया, आज के बाद भेजिए मैंने कभी उस पाखंडी के पास कभी नहीं जाऊं, मेरे पैर में कांटा लग गया। अब उस माई ने सोचा, उस बहन ने सोचा, देख मैं किसी दुर्भाग्य हूं, हे परमात्मा या क्या बनी, क्या आज ही इसका यू कांटा लगना था, ये तो ऐसा निकम्मा है, ना खुद जा सत्संग में ना मन ने जान दे आज के बाद, हे प्रभु ये बहुत माड़े भाग मेरे। तो मां थी उसने उठी, सोचा कोई बात नहीं बाद में देखी जाएगी क्या होगा, तो कहा बेटा के लाग गया तेरे, अग मेरा कांटा लाग गया, देख कितना लंबा यूट दर्द बहुत हो रहा है। तो रात्रि का समय था, उस समय तो मां ने फर्स्ट एड करके उसका पट्टी बांध दी, बेटा सवेरे कांटा निकालेंगे, तो निकला नहीं, वो कोई तेल पानी का फोवा फोवा बांध दिया करते हैं, वो नरम हो गया। तो सुबह उठकर उसने मां ने उसका कांटा निकाल दिया। उधर से वो चोरी करने नहीं जा पाया, उसके साथियों ने आध घंटा बाट इंतजार किया, वो चोरी करने के लिए राजा के महल की तरफ चल पड़े। महल में प्रवेश करने की चेष्टा कर ही रहे थे, सैनिकों ने उनको पकड़ लिया, सिपाहियों ने पकड़ दिया, राजा के पेश कर दिया सुबह सुबह, रात नहीं। तो मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, ये इतने खूंखार बदमाश हैं, इतने खूंखार चोर हैं, जब राजा के महल में भी चोरी करने की नीयत रखते हैं तो आम जनता को ये कैसे बख्शेंगे, इनको सजाए सूली दी जाए। राजा ने मंजूर कर दी कि आज शाम को 4 बजे इनको सूली तोड़ दो सरेआम। अब उनके गले में सुबह सुबह 8 बजे उनके गले में गाल का पट्टी कि हम अपराधी हैं, हम राजा के महल में चोरी करने जा रहे थे, सोच रहे थे हम चोर हैं, आज शाम के समय हमारे को सूली पर चढ़ा जाएगा, कोई सुनता हो तो ऐसा पाप कभी मत करना। ऐसा उनके गले में पट्टी बांध रखी, उनके मुख से कहलाते हुए काला मुंह करके सारी नगरी में एक विशेष बैंड बजाते हुए वो राजा घुमाया करते, राजा के नौकर सैनिक घुमाया करते थे कि उस उनको देखकर और प्रजा डर जाए, कोई चोरी ऐसी गलती ना करे, इस दृष्टिकोण से। अब उन उसके साथियों को वो पुलिस वाले गढ़ते हुए पीटते हुए ला रहे थे और कह रहे थे बोलो हम चोर हैं, राजा के घर चोरी करने की सोच रहे थे और आज हम शाम को 4 बजे सूली पर चढ़ाए जाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी, कोई भी चोरी मत करियो। ऐसा वो नगरी में घूमते हुए आ रहे थे तो जब वो एक विशेष प्रकार का बैंड बजता था तो सभी ये देखने के लिए अपने घरों से बाहर आ जाते हैं नागरिक कि देखें इसने क्या कसूर कर दिया, क्या अपराध किया है। वो दोनों मां बेटा भी अपने घर के बाहर आकर खड़े हो गए। अब उस लड़के ने देखा कि ये तो मेरे साथी हैं और इनको आज शाम को सूली तोड़ा जाएगा, जिनके साथ मैं चोरी करने के लिए जाना चाहता था। अब वो कहते हुए आ रहे हैं कि हम चोर हैं, हम राजा के घर चोरी करने जा रहे थे हमारे, और कोई भी आज हमें शाम को 4 बजे सरेआम उस स्थान पर सूली तोड़ा जाएगा, यानी मेरे को सजाए मौत दी जाएगी। अब वो लड़का ने तो पहचान दिया अपने साथी, मां को क्या पता था कि ये इससे के मित्र हैं। मां तो अपना जाकर जब वो चले गए आगे को अब घर से, मां तो अपना काम लग गई, झाड़ू झपात करने लगी, और वो लड़का अपनी मां के पास जाकर रोने लग गया और मां के सीने से लगकर बुरी तरह रोने लग गया। कहने लगा हे मां, धन है तेरे गुरुदेव को, अगर कल मैं सत्संग में नहीं जाता, तेरे गुरुदेव का खाना लेकर नहीं जाता, हे मां तेरा बेटा नहीं था, आज मैं सूढ़ी तोड़ दिया जाता। अब मां नौकरे निकम्मे, क्यों सूढ़ी तोड़ दिया जाता, तू क्यों डर गया इतना, मेरा बेटा कोई चोर थोड़ा ही है। मां ने ये नहीं मालूम था कि चोरी करता, इतना जरूर पता था कि ये शराब स्वरूप तो पी लेता है। तब उस लड़के ने सारी कहानी बताई, मां मैं पक्का चोर हो गया था और आज रात में मैंने इनके साथ जाकर के चोरी करनी थी, अगर मैं तेरे गुरुदेव का भोजन लेकर नहीं जाता, मेरे पैर में कांटा ना लगता, मां तेरा बेटा नहीं था। अब उस समय उस बालक ने सारी याद आवा है कि मैं मर जाता मां तेरा क्या होता, आप कैसे जीती, यानी इस तरह के विचार उस परमात्मा की कृपा से उस अनाड़ी बालक में मालिक ने वो सोशल सिद्धर करके उस बालक को सीधा कर दिया और फिर मां के साथ जाकर उसने गुरुदेव से उपदेश लिया, अपना जीवन कल्याण कराया। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डार। बंदे तो कर बंदगी जय चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का ये मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। लोट सको तो लोट लो राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देही का विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो और यतन कछु नाही, श्वास उश्वास में नाम जपो व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को आवण हो क न हो, वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होवे। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर बंदी छोड़ की असीम कृपा से ये 5 दिवसीय सत्संग 14 जून सन 2008 को प्रारंभ हुआ। आज ये 3रा दिन है उस परम पिता की महिमा का, ये गुणगान चल रहा है। सत्संग के अंदर ये याद दिला जाता है कि हे प्राणी, ये मनुष्य शरीर आपको परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। यदि हम मनुष्य शरीर पाकर के शुभ कर्म नहीं करते, परमात्मा को याद नहीं करते, प्रभु की भक्ति शास्त्र विधि अनुसार नहीं करते, तो तो मनुष्य जीवन में और अन्य प्राणियों के जीवन में कोई अंतर नहीं है। संतान उत्पत्ति, उसके अंदर मोह ममता, राग द्वेष, मैं मेरी, लड़ाई झगड़े, खेचा ताणी और बाकी अन्य कुमत प्रत्येक प्राणी के समान है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर एक ड्रेस दी है, एक पोशाक है, ये अन्य प्राणियों से भिन्न है। जैसे विद्यार्थी विद्यालय में जाता है, विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थी की पोशाक भिन्न होती है, वो विद्यार्थी कहलाता है, उसकी ड्रेस से ही पहचान हो जाती है ये किसी स्कूल का विद्यार्थी है, किसी विद्यालय का विद्यार्थी है। और जो विद्यार्थी विद्यालय में जाता है, उसको विद्यालय में प्रवेश प्राप्त है और वो शिक्षा ग्रहण